ओम शांति। एक बार सभी अच्छी तरह से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। जब तक आप इस कैंपस में हैं, क्योंकि आप में से बहुत जने पहली बार भी आए होंगे यहाँ, जो पहली बार यहाँ आए वो कृपया हाथ खड़ा करेंगे। काफी भाई बहने पहली बार आए, तो आप जब तक इस कैंपस में हैं आपको ये ओम शांति शब्द सुनने को भी मिलेगा और आप भी बोलने की इच्छा रखेंगे, और जाते समय तक तो आप सीख ही जाएंगे, तो फिर किसी से भी मिलेंगे तो ओम शांति बोल के ही अभिवादन करेंगे। विशेष आज यह क्लास जो हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेन जी ने जैसा अभी पूछा, मैं उसको दूसरे रूप में पूछना चाहूंगा कि जो पिछले 12 मास में, एक साल में, जिसने कभी कोई गोली नहीं खाई हो, कोई दवाई नहीं ली हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया हो, आयोडेक्स बाम वीक्स नहीं लगाया हो, वो कृपया हाथ खड़ा करे, जिन्होंने किसी तरह की कोई एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी आदि आदि नहीं खाए हैं, कुछ भी 1% भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी, लगभग सभी, किसी न किसी मात्रा में रोगी है। आजकल जो वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, उसको बहुत भाई बहने रोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी एक रोग का ही रूप है और रोग का कारण भी है, एक निशानी भी है कि वो आगे चल के रोग प्रवेश होने की बहुत संभावना है उसमें। तो यहां इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में शिव बाबा हमें इस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि हम ये जन्म और आगे के 20 जन्म संपूर्ण निरोगी अवस्था में जीवन जीते हैं, कि जहां नाखून में भी रोग नहीं होता है, उस प्रकार का जीवन हम जी सकते हैं। यहाँ की शिक्षाओं को अगर हम समझ ले और अपने जीवन में धारण कर ले, तो वैसे भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हिंदी में ऐसा कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो मैं ये सेशन चालू करने से पहले हमारे बीच हमारे रामचंद्र भाई हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, वो कृपया स्टेज पर आके 4-5 मिनट में अपना अनुभव शेयर करें कि किस प्रकार से जो भोजन पद्धति अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्वर्णिम आहार पद्धति, वो भोजन पद्धति इन्होंने अपनाई और उस भोजन पद्धति को अपनाने से ही उनको कौन कौन सी बीमारियाँ थी वो ठीक हो गई, वो अभी 4-5 मिनट में हमारे सामने अपना अनुभव रखेंगे।
ओम शांति। शरीर का नाम रामचंद्र भाई है। मैं पिछले 4 साल से ललित भाई जी के पास, मना अकाउंट्स ऑफिस में ही सेवा दे रहा था, तब से ललित भाई जी से मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा। उन्होंने जो ये जीवन पद्धति, मना भोजन पद्धति स्वीकार करके हमको बताया गया, उस अनुसार मैं चला। तो मुझे बचपन से एक बीमारी थी, वो सर्दी, मना नाक बहना और हेडेक, और दूसरा कि साइनस, बहुत बचपन से बहुत बीमारी थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए, एलोपैथिक होम्योपैथिक सब ले ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2 बार नाक का ऑपरेशन भी हुआ, ENT स्पेशलिस्ट ने किया, वो 15 दिन 1 मास तक अच्छा रहा, फिर वही प्रॉब्लम रह गया। दूसरा प्रॉब्लम था, मुझे 1996 से मुझे अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई है अचानक, तो उससे भी मैं पंप लेता था दिन में 2-3 बार, कभी कभी डेरीफाइलिन इंजेक्शन लेता था। वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से धूल डस्ट इसकी वजह से मुझे वो तकलीफ होती थी। इसके अलावा मुझे पेट का भी प्रॉब्लम था और मेरा वजन भी ज़्यादा था, पेट आगे था और वेट भी ज़्यादा था। जब से ये भोजन पद्धति अपनाई भाई जी के गाइडेंस की, तो मेरा वजन और पेट दोनों भी कम हो गए। वजन तो 10 केजी कम हो गया, पेट तो अभी आप देख रहे हैं बहुत आगे तक कम हो गया, और साइनस का नामो निशान नहीं रहा। मैं हमेशा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हमेशा पूरा कैप पहनता था ताकि सर्दी न हो जाए। अभी कैसी भी ठंडी हो कुछ भी हो कभी कैप नहीं पहनता है, माना पूरा का पूरा सर्दी गायब हो गई। फिर मेरा पेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अस्थमा का प्रॉब्लम गया, वेट कम हो गया। ये इतना अच्छा ये पद्धति है भाई जी, इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे ही, आप भी समझ लेना ताकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओम शांति।
रामचंद्र भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के रूप में जॉब करते थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो इस प्रकार के अनेक भाई बहने हैं जिनको ये प्रैक्टिकल फायदा हुआ है, लेकिन ये क्या है मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा, क्योंकि पहले कारण पता चले तो फिर सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो उसको मैं थोड़ा आपको विस्तार से समझाना चाहूँगा। हम सब ये जानते हैं कि ये विश्व नाटक जो चल रहा है जिसमें हम सब भी पार्ट बजा रहे हैं, ये परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन तीन शक्तियों के संयोजन से चल रहा है ये विश्व का पूरा नाटक। परमात्मा के बारे में आप सब भी थोड़ा बहुत अपनी अपनी रीति जानते हैं, हर एक भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, उस परम शक्ति को किसी न किसी रूप में याद करता है और उसको सबसे एक परम शक्ति के रूप में मानते हैं कि भाई ये विश्व नाटक का डायरेक्टर वो परमात्मा है। दूसरा, आत्मा, तो हम सब ये भी जानते हैं कि इस शरीर में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, ये सब हम जानते हैं, जिसको रूह, सोल, आत्मा आदि आदि कहते हैं। और तीसरा, ये प्रकृति जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति की रचना है। प्रकृति के 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व। इन 5 तत्वों से ही ये सारी रचना बनी हुई है। तो ये प्रकृति के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये 3 शक्तियों से ये विश्व का नाटक चल रहा है। प्रकृति के बारे में हम कितना जानते हैं और कितना जानना चाहिए हमको? प्रायः जब प्रकृति की बात होती है तो हम कहते हैं सूरज, चांद, तारे, नदियां, समुद्र, जंगल आदि आदि सब प्रकृति है। वो तो प्रकृति है, हम सब मानते भी हैं, लेकिन उसी प्रकृति का छोटा रूप, मॉडल, वो हमारा शरीर है। जैसे आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा अगर यूनिवर्सिटी बनने वाली हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली हो यूनिवर्सिटी की, तो पहले उसका एक छोटा मॉडल बनाया जाता है। एक छोटा सा मॉडल बना के कांच की पेटी में रखते हैं वहां पे, तो जो भी आते हैं उसको देखते हैं, वो देखने से पता लग जाता है कि ये बिल्डिंग कैसी बनने वाली है, वो उसको मॉडल कहते हैं। यहां भी इस कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे दिल्ली का हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, उसका मॉडल रखा हुआ है। तो इस प्रकार का मॉडल बनाया जाता है। तो ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर भी बेहद प्रकृति का छोटा मॉडल है। ये शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। जो 5 तत्व आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व है, इसी से बना हुआ ये शरीर है। और उसका प्रूफ क्या है, हम दिन भर में कई बार पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं पानी, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं पानी, क्यों खाते हैं खाना, पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि कहते हैं इस शरीर में 60-70% पानी है। तो जैसे ही पानी कम होता है हमको प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, क्योंकि ये पानी से बना हुआ है। खाना भी इसीलिए हम खाते हैं ताकि वो पांच तत्व पूरा मिलते रहे। तो अगर इस शरीर को हमने ठीक से समझ लिया तो उस प्रकृति को भी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये शरीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, अगर ये शरीर ठीक नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। अगर बीमार है आप, चाहे आपकी इच्छा है कि मैं सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं अच्छी तरह से, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं तो क्या होगा, लोगों की सेवा करना तो दूर, दूसरे लोग आपकी सेवा करेंगे, आपको सेवा लेनी पड़ेगी। इसलिए शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। देखिए महाभारत के युद्ध में बताते हैं कर्ण की हार क्यों हुई, कर्ण था ना महाभारत में, कर्ण की हार क्यों हुई, क्योंकि जब युद्ध में वो मैदान में था तो उसका रथ बिगड़ गया था, रथ बिगड़ गया, वो रथ ठीक करने उतरा तो उसको उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको मार दिया गया। तो ये शरीर हमारा रथ है, आत्मा का रथ है, जो आपको आत्मा के सेशन में और डिटेल में बताएंगे कल। तो ये शरीर जो आत्मा का रथ है वो अगर ठीक नहीं है तो आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए इस रथ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं जीवन यात्रा है, अब जीवन यात्रा है, इस यात्रा में अगर ये रथ ही ठीक नहीं चलेगा तो यात्रा पूरी नहीं हो सकेगी ठीक से, या कठिनाई रहेगी, जिंदगी भर कठिनाई रहेगी। अब जैसे वो बेहद प्रकृति में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ऐसे इस छोटी प्रकृति के मॉडल में भी प्रॉब्लम होते हैं। कैसे, जैसे वहां पर जो है तूफान आता है, बेहद प्रकृति में तूफान आता है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं तूफान आया है, वैसे इस शरीर में भी गैस बनता है, वहां बड़े रूप में होता है, यहां छोटे रूप में होता है। फिर वहां पे जबरदस्त बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो यहां पर भी क्या होता है, दस्त लगता है। वहां पे सुनामी आती है समुद्र में, यहां पे उल्टियां होती है। वहां पे अकाल पड़ता है, यहां बुखार होता है। वहां भूकंप होता है, यहां हार्ट अटैक होता है। ऐसे जो जो वो बड़ी प्रकृति में जो होता है प्रॉब्लम, वो इस छोटी प्रकृति में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये छोटी प्रकृति उसी बड़ी प्रकृति का मॉडल है, छोटा रूप है। तो हमें इस शरीर को समझना है, क्योंकि हमें जीवन कैसा जीना है, हमें जीवन बीमार होके कठिनाइयों में ऊँ-आँ करते हुए नहीं जीना है, लेकिन एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, देवताओं जैसा जीवन जीना है, जो बाबा के यहाँ इस ज्ञान में बताया जाता है कि कैसे हम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण जैसा जीवन बना सकते हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन हम कैसे बना सकते हैं, वैसा जीवन हमें जीना है। परमात्मा ने भी कहा है कि इस प्रकृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पास नहीं हो सकेंगे। ये शरीर जो है इसकी माँ कौन है, क्योंकि आपको पहले भी बताया ये प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है, तो इस शरीर की माँ है प्रकृति। जैसे कहते हैं आत्मा के पिता कौन है, परमात्मा, सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा है, ऐसे ही इस शरीर का की माँ जो है वो प्रकृति है, जिसने इस शरीर को बनाया। तो इस माँ ने इस शरीर को बहुत अच्छी तरह बनाया है, बहुत हेल्दी बनाया है, जो हम आगे समझेंगे कैसे हेल्दी बनाया है। प्रकृति बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान प्रकृति है। आप देखेंगे दुनिया में क्या कहते हैं, कितने आश्चर्य है, सात आश्चर्य कहते हैं ना, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आगरा का ताजमहल भी एक आश्चर्य गिना जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा आश्चर्य हमारा ये शरीर है, सबसे बड़ा आश्चर्य हमारा ये शरीर है। कैसे है? आप सबके हृदय में, हम सबके हृदय में यहां एक पंप रखा हुआ है ना। पंप क्या करता है? वो धड़कता रहता है। आप हाथ लगाएंगे तो आपको वो धड़कन भी अनुभव होगी, धड़कता रहता है वो पंप। कब से धड़कता है? जब से ये शरीर मां के गर्भ में था तब से वो धड़कना शुरू करता है। और कब तक धड़कता है? जब तक मृत्यु होती है तब तक वो धड़कता ही रहता है। क्या हम भगवान से स्टैम्प पेपर पर लिखवा के लाए थे कि इसका धड़कन बंद नहीं होनी चाहिए, ये सदा धड़कते रहना चाहिए? हम ऐसा कुछ लिखवा के नहीं लाए, फिर भी ये धड़कता ही रहता है। कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 70 से 80 बार धड़कता है। और अगर एक मिनट भी रेस्ट करे तो, ये कहे भाई मैं थक गया हूं एक मिनट रेस्ट करता हूं, एक मिनट रेस्ट करे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारी सबकी रिटर्न टिकट कंफर्म हो जाएगी। एक मिनट भी रेस्ट करेगा तो रिटर्न टिकट कंफर्म हो जाएगी। सब रिटर्न टिकट के साथ ही आए हुए हैं, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन ये एक मिनट अगर रेस्ट कर लेगा तो वो रिटर्न टिकट कंफर्म हो जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे कि हड्डियों और मांस का बना हुआ यह शरीर है, हड्डियों और मांस का बना हुआ। इसके ऊपर अगर ये चमड़ी नहीं लगाता भगवान, ये प्रकृति ये चमड़ी नहीं लगाती, तो क्या हम एक दूसरे को देख सकते थे? केवल हड्डियों और मांस में हम देख भी नहीं सकते एक दूसरे को। लेकिन इसके ऊपर ये स्किन लगा दी, चमड़ी लगा दी, तो हम आसानी से एक दूसरे के साथ व्यवहार में आ सकते हैं। अच्छा, इससे भी एक बड़ी बात, हम कोई से भी कलर का खाना खाते हैं, चाहे हरा कलर, सफेद कलर, लाल कलर, जामुनी कलर, बैंगनी कलर, किसी भी कलर का खाना खाते हैं। खून कौन से कलर का बनते हैं? कौन से कलर का खून बनता है? लाल कलर का ही खून बनता है। अच्छा, उसमें भी अगर ये भाई साहब काला अंगूर खाते हैं और ये बेंजी काला अंगूर खाते हैं, तो दोनों का खून कौन से कलर का बनेगा? लाल कलर का बनेगा। काला अंगूर खा रहे हैं लेकिन लाल कलर का खून बनेगा। लेकिन इनका ए पॉजिटिव बनेगा, इनका बी पॉजिटिव बनेगा। यह सिस्टम किसने सेट किया कि इनका वही काला अंगूर खा रहे हैं, इनका ए पॉजिटिव ब्लड बन रहा है और इनका बी पॉजिटिव ब्लड बन रहा है? यह सिस्टम किसने सेट किया? तो प्रकृति अद्भुत है कि नहीं है, आप बताइए। कितनी वंडरफुल, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान प्रकृति है, कितनी गजब की रचना की है प्रकृति ने। कभी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांति से बैठ के इस शरीर के बारे में सोचना, क्या किसी कारखाने में बन सकता है ये ऐसा शरीर? कितना वंडरफुल शरीर बनाया। तो जब वंडरफुल प्रकृति है तो उसने इस शरीर को चलाने के लिए भी तो सारी व्यवस्थाएं बनाई होगी ना, कि नहीं बनाई है? कोई भी मां बाप अपने बच्चे को जन्म देने के बाद रोड पर नहीं छोड़ देते हैं। उस बच्चे के लिए खाने पीने, पढ़ने, रहने, पहनने सब व्यवस्था माँ बाप करते हैं, क्योंकि वो उसकी रचना है। तो माँ बाप सब व्यवस्था करते हैं। तो ये शरीर की माँ भी कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति ने भी इस शरीर को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं किया है, सारी व्यवस्था, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। माँ अपने बच्चों से पैसा नहीं लेती। कोई मां लेती है अपने बच्चों से पैसा? फ्री ऑफ चार्ज सारी व्यवस्था किया है। तो इस शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, क्योंकि 5 तत्व से बना हुआ है। जैसे बताया ना, ये बिल्डिंग है, ये शरीर भी एक बिल्डिंग है। जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से, रेती से, सीमेंट से आदि से बना है, ऐसे ये बिल्डिंग 5 तत्वों से बना है। तो इसको चलाने के लिए भी वही 5 तत्व चाहिए, और वो 5ों तत्व प्रकृति ने फ्री ऑफ चार्ज दिया है। फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं। आकाश तत्व फ्री दिया है, हवा तत्व फ्री दिया है। हम दिन में 24 घंटा श्वास ले रहे हैं। हाँ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ और एक बोतल ऑक्सीजन चढ़ा लो तो कितना बिल आएगा वो आपको पता लग जाएगा। कि कितना बिल आ जाएगा एक बोतल ऑक्सीजन चढ़ाने का, और यहां हम 24 घंटा ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रकृति कोई बिल देती है हमको? और क्या वो बिल देवे तो हम भर सकते हैं? फिर अग्नि तत्व सूरज फ्री मिला हुआ है, पानी तत्व फ्री है, देखो बारिश कोई पैसा ले रही है हमसे? फ्री बारिश हो रही है, नदियां समुद्र सब फ्री है। पृथ्वी तत्व फ्री है, सारा अनाज फल फूल सब्जियां हमारे लिए फ्री पैदा कर रही है। आप देखेंगे कि मनुष्य के अलावा कहते हैं 84 लाख योनियां है, आप सब भी देखते हैं अपनी आंखों से, 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने जीवन को जीने के लिए खाने पीने के लिए एक रुपया भी खर्च करता हो। एक भी प्राणी नहीं है जो जीने के लिए खाने के लिए एक रुपया भी खर्च करता है, और सब स्वस्थ है, लगभग सभी स्वस्थ हैं दूसरे प्राणी मनुष्य के अलावा। और मनुष्य खाने के लिए समय शक्ति धन सब कुछ खर्च करता है, सब कुछ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जीवन ही खाने के लिए ही मिला हुआ है, सब कुछ सारा टाइम उसी में जाता है। हमारी माताओं का अधिकतर टाइम किचन में ही जाता है, जैसे जीवन ही इसके लिए, और फिर क्या है रिजल्ट? बीमार। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बकरी कभी बीमार होते होंगे, मनुष्य का बना हुआ खाना खाते हैं इसलिए बीमार होते हैं, बाकी नहीं होते। मनुष्य का बनाया हुआ खाते हैं तो वो कभी बीमार हो जाते हैं, बाकी कोई प्राणी बीमार नहीं है। तो आप देखिए कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं का हमने दुरुपयोग किया या अज्ञानतावश ठीक से उपयोग नहीं किया तो ये बीमारी आई। बीमारी की निशानी क्या है? स्वस्थ शरीर किसको कहते हैं और अस्वस्थ शरीर किसको कहते हैं? मैं कुछ निशानियां सुना रहा हूं, वो देख लेना आप, उसके आधार पर आपको पता लगेगा कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। तो स्वस्थ शरीर की निशानी है पेट छाती से कम हो, सोते ही गहरी नींद आती हो, पेट साफ होता हो, नियमित रूप से पेट साफ होता हो, स्वाभाविक भूख लगती हो, सारा दिन कार्य करने में उमंग उत्साह रहता हो, सुबह उठते ही तन मन एकदम स्फूर्ति वाला हो, मधुर वाणी बोलते हो हम, चेहरे से एकदम कांति झलकती हो, हर अवस्था में चेहरे पे मुस्कान रहती हो, ये स्वस्थ शरीर की निशानी है, चिड़चिड़ापन नहीं हो। और अस्वस्थ शरीर की निशानी पेट छाती से बड़ा हो, नींद ठीक से नहीं आती हो, पेट की सफाई ठीक से नहीं होती हो, भूख नहीं लगती हो, आलस्य रहता हो, जल्दी थकान आ जाती हो, चिड़चिड़ापन हो, चेहरे पर कांति नहीं हो, दागे हो, शीघ्र क्रोध आ जाता हो, किसी भी तरह की दवाइयां लेते हो, ये सब अस्वस्थ शरीर की निशानी है। तो आप खुद ही जज कर लीजिए, जज योर सेल्फ कि आपका शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अब ये बीमारी या अस्वस्थता का कारण क्या है वो पहले हम समझ ले कि ये अस्वस्थ हम क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। लोग कहते हैं कि भाई बीमारियां जो है वो पूर्व जन्म के कारण से आती है, विशेष जो धर्म में आस्था रखते हैं या धर्म नेताएं होते हैं वो ये कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई कर्म है इसके कारण से बीमारी हुई है। माना ये ऐसी बात हुई कि किसी ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा शक्कर खाई तो इस बार डायबिटीज हो गया, इस जन्म में डायबिटीज हो गया, पिछले जन्म में बहुत घी तेल खाया तो इस जन्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो गया, क्या यह संभव है? संभव है कि पिछले जन्म में शक्कर बहुत खाई हो तो इस जन्म में डायबिटीज हो गया हो? संभव नहीं है। तो पूर्व जन्म के रोग भी इस प्रकार से नहीं माना जाता है। हाँ, अगर बच्चा जन्मता है और जन्म के समय ही उसको कोई रोग है, कोई अपाहिज है, आंख नहीं है, हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, जन्म के समय, तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्व जन्म का कोई रोग हो सकता है। हालांकि उसमें भी माता पिता का रोल होता है। दूसरा, इस जन्म में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब था इसका, वो ये चुकतु हुआ है। बाकी जितने भी रोग हैं A to Z, मैं नाम नहीं ले रहा हूं रोगों के, क्योंकि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो लगभग 8000 प्रकार के रोग हैं दुनिया में अभी, 8000 प्रकार के रोग। तो जितने भी रोग है वो सब पूर्व जन्म के कारण से नहीं है, लेकिन इसी जन्म में पूर्व समय के कारण से है। इसी जन्म में पूर्व समय, जैसे किसी की आयु 50 साल है तो जो 50 साल तक खाया पिया है ना, उसके कारण से रोग है। पूर्व जन्म नहीं, लेकिन इसी जन्म में पूर्व समय के कारण से रोग है। फिर कोई कोई कहते हैं कि एलर्जी के कारण रोग होता है। अब एलर्जी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिशारक शक्ति कम हो जाती है, वो भी खराब भोजन के कारण, खराब रहन सहन के कारण वो शक्ति कम होती है, उसके कारण से रोग है। फिर कोई कहते हैं आनुवंशिक है, मां बाप से वो गिफ्ट में मिलता है रोग। बहुत से रोग कहते हैं मां बाप से गिफ्ट में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां उदयपुर में मेरा ये हेल्थ पर ही क्लास था, तो वो क्लास के बाद एक माता मेरे पास आई और मुझे कहा, ललित भाई मेरी बच्ची अभी 12 साल की है, वो जब से 6 साल की थी तब से उसको डायबिटीज है और उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो मैंने उस माता को पूछा कि आपको डायबिटीज है, तो कहा नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है। फिर मैंने कहा इसके पापा को डायबिटीज है, बोले इसके पापा को भी डायबिटीज नहीं है। बोले हमारे परिवार में 7 पीढ़ी में किसी को डायबिटीज नहीं है, और इसको 6 साल की उम्र में ही डायबिटीज हो गया और इंसुलिन लेना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि माँ बाप के कारण ही रोग आता है वो नहीं है, लेकिन माँ बाप का जो किचन है ना, रसोई घर, वो रोग का कारण है। तो वो ही रसोई घर बच्चे को गिफ्ट में मिलता है, तो वो इस प्रकार से वो रोग गिफ्ट में मिलता है। माँ बाप के कारण नहीं, लेकिन माँ बाप की रसोई घर के किचन के कारण रोग गिफ्ट में मिलता है। वही भोजन सिस्टम हम चालू रखते हैं माँ बाप वाला, इसलिए बच्चों में भी वो रोग आता है। ये समझने की बात है बहुत गहराई से। कोई कहते हैं बैक्टीरिया के कारण रोग होते हैं, आजकल की मेडिकल साइंस विशेष कहती है बैक्टीरिया के कारण से बहुत रोग होते हैं। अब बैक्टीरिया, आप जो भी भाई बहने यहां बैठे हैं, क्या आपने इन आंखों से बैक्टीरिया को देखा है? इन आंखों से बैक्टीरिया दिखाई देता है? वो इतना सूक्ष्म है कि उसको देखने के लिए विशेष कोई यंत्र से देखना पड़ता है, तो वो बैक्टीरिया दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म बैक्टीरिया। और हमारा ये शरीर 5-6 फीट लंबा, इतना हट्टा कट्टा शरीर, इतनी मजबूत आत्मा उसके अंदर, वो बैक्टीरिया हमारा क्या बिगाड़ेगा? ये जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजाओं के महल होते थे, बहुत बड़े बड़े महल होते थे, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, फिर शहर के चारों ओर भी ऊंची ऊंची दीवार बनाते थे ताकि बाहर का दुश्मन कोई आक्रमण नहीं करे, उसके लिए ऊंची ऊंची दीवार बनाते थे और उन दीवारों पर सैनिक पहरा देते थे कि अगर बाहर का दुश्मन कोई आक्रमण करता है तो वो सैनिक क्या करते हैं, वहीं पे उसको मार गिराते थे, तो वो दुश्मन अंदर आके कुछ भी ये परेशानी, मतलब खाना खराबी नहीं करते थे। फिर क्या हुआ, अगर उस किले के अंदर, उस शहर के अंदर ही कोई दुश्मन पैदा हो गया हो तो क्या होगा, वो अंदर ही नुकसान कर देगा, और रात को वो दीवारों के दरवाजे भी खोल देगा तो क्या होगा, वो बाहर के दुश्मन भी अंदर आ जाएंगे, तो वो राजा हार जाएगा। इसी प्रकार से जो बैक्टीरिया है वो बाहर के दुश्मन है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि प्रकृति ने इतनी मजबूत ये बॉडी बनाई है, बहुत मजबूत बनाई है कि वो बाहर के दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अंदर अगर दुश्मन पैदा हो गया इस शरीर के अंदर ही, तो क्या होगा, वो बाहर के दुश्मन को मदद करेगा और हमको बीमार कर देगा। इसलिए दुश्मन कहीं ना कहीं अंदर ही है, वो समझने की बात। फिर कोई कहते हैं टेंशन के कारण बीमारी होती है। अब केवल टेंशन से बीमारी नहीं होती है, लेकिन टेंशन बीमारी को बढ़ाता है। जैसे टेंशन है घी और बीमारी है अग्नि, अगर हम घी को यहां रखेंगे तो क्या यहां आग लग जाएगी? केवल घी को हम इलाके यहां रखेंगे तो क्या यहां आग लग जाएगी? नहीं लगेगी ना। ये सोफे पर लाके घी रखेंगे तो यहां आग लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन जहां आग लगी हुई है और उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आग और भड़क जाएगी। इसी प्रकार से अगर पहले से अंदर कोई रोग विद्यमान है और टेंशन करते हैं तो क्या होगा? वो रोग और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये सब रोगों का कारण नहीं है, तो रोगों का कारण क्या है? मूल कारण क्या है? रोग होता क्यों है? उसको हम पहले समझ लें। रोग होता है इस शरीर में विष द्रव्य, जहरीले पदार्थ, जिसको इंग्लिश में टॉक्सिन कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं मल, या बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो कचरा। वो जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है उसके कारण से सब रोग होते हैं। सभी रोगों का एक ही कारण है। जैसे यहां बाबा बताते हैं कि सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकारों का एक ही कारण है देह अभिमान। इस शरीर का भान, देह अभिमान आता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते हैं। इस प्रकार से शरीर में अगर सभी रोग आते हैं तो सभी रोगों का एक ही कारण है, और वो कारण है टॉक्सिन, विष द्रव्य, मल या कचरा। वो शरीर में इकट्ठा होता रहता है और उसके कारण से ही सब रोग होते हैं। सभी रोग उसी के कारण से होते हैं। वो कचरा अलग अलग रूप में हो सकता है। जब वो कचरा बेड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, है वही कचरा बेड कोलेस्ट्रॉल, वो हार्ट अटैक हो गया। वही कचरा अगर ट्यूमर के रूप में होता है तो हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसको कैंसर हो गया। वही कचरा घुटनों में एसिड, यूरिक एसिड के रूप में जमा होता है तो हम कहते हैं घुटने खराब हो गए, है वही कचरा लेकिन घुटने खराब हो गए, वो यूरिक एसिड के रूप में आ गया। वही कचरा वेन्स में आ जाता है तो वेरिकोज वेन हो गए, नसें फूल जाती है। वही कचरा पेट में आ गया तो गैस के रूप में आ गया, तो खट्टी डकारे आ रही और गैस हो रहा है। वही कचरा ब्लड में चला गया तो ब्लड कैंसर हो गया, है एक ही कचरा, अलग अलग रूप में बॉडी में आ जाता है तो अलग अलग रोगों के नाम दे दिए गए हैं। 8000 प्रकार के रोगों के नाम दे दिए गए। तो अभी हमको पता चल गया कि सभी रोगों का एक ही कारण है कचरा। अच्छा, ये कचरा क्यों आया बॉडी में? हम तो कचरा नहीं खाते हैं, फिर कचरा आया क्यों बॉडी में? ये कचरा इकट्ठा कैसे हुआ? टॉक्सिन कैसे आया? तो ये टॉक्सिन आया हमारे खान पान के कारण, जो हम खाते पीते हैं उसके कारण से ये अंदर टॉक्सिन बना। तो आप समझिए कि हमारे खान पान का कितना असर हो रहा है बॉडी पर, ये सारा टॉक्सिन उसके कारण ही बन रहा है। तो हमको कारण पता चल गया कि सभी रोगों का एक ही कारण है टॉक्सिन शरीर में। तो अभी सभी रोगों से मुक्त होना हो तो क्या करेंगे? उपाय भी एक ही है। जिस प्रकार से रोगों का कारण एक है, ऐसे उपाय भी एक ही है। जैसे सभी विकारों का एक ही कारण है देह अभिमान, सभी विकारों को दूर करना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करना हो, तो बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी अवस्था बनावे। इसी प्रकार से सभी रोगों को दूर करना हो तो शरीर में से इस टॉक्सिन को निकाल देवे, शरीर में से टॉक्सिन निकालने का, उससे सभी रोग ठीक हो जाएंगे। इतना सिंपल है रोगों को ठीक करना। केवल शरीर में से अगर हम टॉक्सिन निकाल देते हैं तो हमारे जो भी वर्तमान रोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। और अगर भविष्य में हम टॉक्सिन नहीं आने देते हैं शरीर में तो भविष्य में कभी भी नहीं होते। आप समझिए कि इस समय, इस कलयुग में हम एक भी गोली दवाई के बगैर सारी जीवन जिए तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि जिंदगी में कभी कोई गोली दवाई नहीं लेनी पड़े। हमको तो नहीं लेनी पड़े, हमारे परिवार वालों को भी नहीं लेनी पड़े, हमारे मित्र संबंधियों को भी नहीं लेनी पड़े, किसी को भी नहीं लेनी पड़े, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और हो सकता है, बहुत सहज हो सकता है, हमने प्रयोग करके देखा है। खुद मुझे जब ये एक साल पहले मैंने ये प्रयोग चालू किया था उस समय मुझे 15 साल से वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम था, पैरों में नसें फूल गई थी, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम था, स्किन डिजीज था, सोराइसिस हो गया था, बहुत खुजली चलती थी, एलर्जी ऐसी थी कि मैं 50 किलोमीटर भी कहीं घूम के आता तो डस्ट के कारण सर्दी जुकाम हो जाता, खांसी हो जाती, बुखार हो जाता, इस प्रकार से एलर्जी थी। यहां से ये सारा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है तो ये गले की यहाँ की नसें और दोनों शोल्डर की नसें पकड़ा जाती, बार बार फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता, एक्सरसाइज करनी पड़ती, सारा मालिश वालिश करानी पड़ती, तब जाके कहीं वापस थोड़ा चलने लायक होते, ये सब प्रॉब्लम थी। और जैसे ही ये प्रयोग चालू किए सारी प्रॉब्लम गायब, सारी प्रॉब्लम गायब, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई भी मेडिकल दवाई नहीं। पहले मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सारे ट्रीटमेंट कर दिए थे, जब दवाएं लेते तब तक ठीक रहता, लेकिन दवाएं बंद की और सारी वापस प्रॉब्लम चालू हो जाती। लेकिन अभी बिल्कुल सारी प्रॉब्लम गायब, कोई दवा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई पैदल नहीं, कुछ भी नहीं, केवल भोजन में परिवर्तन किया और टॉक्सिन बाहर निकालने की एक दो और विधि अपनाई और सारे रोग गायब हो गए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं इसके। तो टॉक्सिन निकालने का लिए हमको क्या करना है, हमको प्रकृति माँ की गोद में बैठ जाना है, बस। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे से कोई गलती भी हो गई, कोई जैसे गिलास गिर गया या टूट गया कुछ, तो रोता रोता माँ के पास आता है, माँ 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 रोता रोता आता है। माँ पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, तो के मम्मी मम्मी मेरे से ये टूट गया। वो सच बोल देता है तो माँ क्या उसको पीटती है क्या, माँ यही है उसके सिर पे हाथ घुमा के क्या कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वो तो वैसे भी पुराना हो गया था, हम मार्केट से नया ले आएंगे, आगे से ध्यान रखना, ऐसे ही माँ कहती है। तो इसी प्रकार से प्रकृति शरीर की माँ है, हम भी प्रकृति के पास चले जाएं कि माँ मेरे से भूल हो गई और मैंने कुछ उल्टा सुलटा ये टॉक्सिन खा के टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है, बीमार हो गया हूँ, तो माँ यही कहेगी कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती, अब आगे से ठीक कर लो, तो पुराना भी सब ठीक कर दूंगी और आगे भी कभी बीमार नहीं होने दूंगी। तो हम केवल प्रकृति के कुछ छोटे से नियम है 5-7, उन नियम को अगर हम फॉलो करेंगे तो पुराने सारे रोग ठीक हो जाएंगे और नया कोई भी रोग नहीं होगा, जिंदगी में कभी किसी को कोई रोग नहीं होगा अगर इन नियमों को हम पालन करेंगे। तो ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, वो नियम क्या क्या है, वो नियम आप ध्यान से सुनना और उनको पालन करने के बाद हम आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है लास्ट में पूछ सकते हैं। तो पहला नियम जो है वो है प्रकृति की दिनचर्या। यहां है ना, बाबा हमें आत्मा की दिनचर्या के बारे में विशेष बताते हैं कि 24 घंटे को हम 8-8 घंटे में डिवाइड करते हैं, कि 8 घंटा ज्ञान योग सेवा, 8 घंटा जो हमारा कर्म है नौकरी धंधा जो भी है, और 8 घंटा विश्राम, शरीर को खाना पीना विश्राम कराना आदि, 24 घंटे के 8-8 घंटे के तीन भाग बाबा ने बताए। प्रकृति के भी 24 घंटे के 8-8 घंटे के तीन समय है, सुबह 4 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक प्रकृति सफाई का काम करती है। आप देखेंगे घर में, दुकान में, ऑफिस में सफाई कब होती है, सवेरे सवेरे ही होती है, तो सुबह सफाई का काम होता है, सुबह 4 बजे से दिन में 12 बजे तक सफाई करती है। अब सफाई जब चल रही हो तब क्या करना चाहिए, सफाई में मदद करनी चाहिए कि सफाई में और उनको रुकावट डालनी चाहिए, मदद करेंगे तो अच्छी तरह सफाई होगी। तो इसी प्रकार से हमको भी प्रकृति को सफाई में मदद करनी चाहिए सवेरे 4 से 12 बजे तक, प्रकृति इस शरीर में सफाई करती है। फिर दिन में 12 बजे से रात को 8 बजे तक कर्म का समय है, जिसमें खाना पीना पचाना खून बनाना आदि आदि सारी प्रोसेस, उसमें कर्म की प्रोसेस होती है दिन में 12 बजे से रात को 8 बजे तक। और रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक विश्राम का टाइम है, ये प्रकृति का विश्राम का टाइम है। आप देखेंगे आपके आसपास में जो भी पशु पक्षी होंगे, वो रात पड़ते ही पक्षी कहाँ जाते हैं, सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, पशु सब अपने अपने स्थानों पर चले जाते रात पड़ते ही। पता नहीं उन्होंने कौन से कॉलेज में जाके ये नियम पढ़े हैं प्रकृति के, वो नहीं पता, लेकिन उनको पक्के याद है ये प्रकृति के नियम, और वो उसको फॉलो करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन मनुष्यों की रात कब होती है, अभी रात को 12 1 2 बजे रात होती है मनुष्य की, सोने का टाइम तब होता है उनका। टीवी कल्चर, पार्टी कल्चर, गपशप कल्चर, ये सब में रात को 1 2 बजता है। फिर सवेरे कब होती है, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे सवेरे होती है। तो प्रकृति के सारे नियमों को हमने उल्टा सुलटा करके रखा है, तो शरीर में टॉक्सिन पैदा होना ही है। इसलिए हाँ, 10-15% अगर हम ऊपर नीचे करते हैं, 1-2 घंटा अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ये बहुत मजबूत बॉडी बनाई है प्रकृति ने, तो 10-15% तो ये सहन कर लेगी, लेकिन इससे ज्यादा फिर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर गड़बड़ शुरू हो सकती है, हुई है, आप सब एग्जाम्पल हो उसके, गड़बड़ शुरू हुई है। दूसरा, खाना कब खाएं, दूसरा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना कब खाना चाहिए या पानी कब पीना चाहिए। तो बहुत सिंपल इसका नियम है, भूख लगे तब खाने का, प्यास लगे तब पीने का। ऐसा नहीं कि जब भी किचन में गए तो कुछ डिब्बा खोला और खा लिया, जब भी मटकी के पास गए तो पानी पी लिया, नहीं, गलत। प्रकृति का नियम यह है कि भूख लगे तब खाने का, प्यास लगे तब पीने का। अंदर ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ है कि जरूरत होगी तुरंत भूख लग जाएगी, जरूरत होगी तुरंत प्यास लग जाएगी, और तब आपको खाना पीना है। ऐसा नहीं कि हाँ 12 बज गए चलो खा लो, 1 बज गया चलो खा लो, नहीं, भूख लगे तो ही खाने का। तो आप कहेंगे कि अगर सारा दिन भूख नहीं लगे तो प्रकृति का नियम है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाने का, बहुत सिंपल बात है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाने का। भूख नहीं लगी इसका मतलब ही यह है कि अंदर अभी स्टॉक है, जरूरत नहीं है अंदर, जरूरत होगी तो भूख लग जाएगी। तो इस नियम को आप अच्छी तरह समझ ले, भूख लगे तब खाने का, प्यास लगे तब पीने का। अच्छा, कितना खाए कितना पिए, इसके लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई बुक सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपको इतना खाना चाहिए इतना नहीं खाना चाहिए। सिंपल नियम है, भूख लगे इतना खाने का, प्यास लगे उतना पीने का, बहुत सिंपल सिस्टम सेट है। वो भी अंदर, जैसे आपने खाना शुरू किया, अंदर स्टॉक पूरा हुआ, तुरंत इशारा मिल जाएगा आपको कि बस पूरा हो गया अंदर स्टॉक। लेकिन क्या होता है, थाली में गुलाब जामुन है, समोसा है, कचौरी है, पराठा है, दही है, ये है, तो फिर वो लिमिट नहीं रहती है और खाए जाते हैं। ये यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो नकली स्वाद वाली चीजें हैं ना, वो ज्यादा खाई जाती है, और जो असली स्वाद है, जो प्रकृति ने अमृत बनाया हुआ है हमारे लिए, उसको आप खाने बैठेंगे तो ज्यादा नहीं खा सकते हैं। आप अगर एप्पल खाने बैठेंगे तो ज्यादा नहीं खाएंगे, एक एप्पल खाई या दो एप्पल खाई उसके बाद ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन वही गुलाब जामुन खाने बैठेंगे तो, अच्छा देखो इसके पीछे क्या सिद्धांत है। आपके सामने थाली आई, अंदर गुलाब जामुन है, आपने गुलाब जामुन उठाया और जीभ पे रखा, जीभ पे वो कितनी देर रहता है गुलाब जामुन, मात्र कुछ सेकंड, और वो क्या होता है, अंदर चला जाता है। अब इस शरीर में स्वादेंद्रिय कौन सी है, स्वाद किसको चाहिए, जीभ को चाहिए। अब आपने तो गुलाब जामुन रखा जीभ पर, लेकिन वो क्या हुआ, अंदर चला गया। अब जैसे ही वो अंदर गया और जीभ छटपटाने लगी, मेरे को तो स्वाद मिला ही नहीं, तुरंत उसकी कंप्लेन शुरू हो गई, मेरे तो स्वाद बाकी रह गया, मुझे तो स्वाद मिला ही नहीं पूरा।
अच्छा,
फिर हमने क्या किया, दूसरा गुलाब जामुन लिया, क्योंकि जीभ को स्वाद पूरा कराना है ना, तो दूसरा गुलाब जामुन लिया। दूसरा लेके जीभ पे रखा, फिर क्या हुआ, फिर वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही जीभ फिर छटपटाने लगी, मेरा तो स्वाद पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि जीभ से जैसे ही उतरा स्वाद होता ही नहीं है, जीभ पर है तब तक ही स्वाद मिलता है, तो अंदर चला गया। फिर जीभ वो की वही प्यासी भूखी रह गई, फिर हमने तीसरा लिया। ऐसे करते करते ये जीभ और पेट का झगड़ा चलता ही रहता है, उसमें जीभ संतुष्ट नहीं होती है और पेट ओवर जो है ओवर हो जाता है उसमें, और गड़बड़ चालू हो जाती है। और इसके बजाय अगर हम जो ओरिजिनल स्वाद वाला है, प्रकृति ने हमारे लिए जो ओरिजिनल स्वाद वाला बनाया, ये गुलाब जामुन नकली स्वाद है, जो ओरिजिनल स्वाद वाला प्रकृति ने बनाया है वो अगर हम खाते हैं तो वो जीभ पर रहेगा, उसको चबाना पड़ेगा, जीभ उसका स्वाद लेगी और थोड़े में ही पेट भर जाएगा। इसलिए कितना खाना है, भूख लगे इतना ही खाना है। आप जैसे आपके पास स्कूटर है, आप स्कूटर लेके पेट्रोल पंप पर गए, टंकी फुल करवाई, लाके स्कूटर घर में रख दिया, घर में रख दिया, तीन चार दिन तक आपको कहीं जाने का चांस नहीं मिला, पांचवें दिन आप बाहर निकले स्कूटर लेके, क्या आप वापिस पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाएंगे उसमें? पांचवें दिन क्यों नहीं भरवाएंगे, चार दिन तो भरवाया नहीं आपने, क्योंकि टंकी फुल है। अगर आप जाएंगे और पेट्रोल डलवाएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और बिगड़ जाएगा स्कूटर। इसी प्रकार से जब अंदर स्टॉक फुल है, टंकी फुल है, तो फिर ज्यादा खाने पीने की क्या जरूरत है। जब वो रिजर्व सिस्टम लगेगा, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, तब उसको खिलाओ पिलाओ। ऐसे ही पीने की बात है, पानी पीने की, आजकल तो पानी पीने की ऐसी वाटर थेरापी चली है कि दिन में 5-7 लीटर पानी तक पिला देते हैं उसमें। मैं खुद उठते ही 3.5 गिलास पानी पीता था, 4 गिलास पानी पीता था, 1.25 लीटर पानी पीता था वाटर थेरेपी के हिसाब से, और सारे दिन जब इच्छा हो तब 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लेने का। और ये वाटर थेरेपी के कारण भारत में पीने के पानी की कमी हो गई, ये वाटर टैंक समझ लिया हमने इसको, और वाटर टैंक समझ के बस डाले जा रहे हैं अंदर, डाले जा रहे हैं अंदर, डाले जा रहे हैं। जरूरत क्या है कुछ भी पता नहीं, बिचारी किडनी परेशान हो गई काम कर करके, थक गई है वो। आप सबके पास वाहन होंगे जिसमें स्पीड लिमिट होती है, जैसे स्कूटर में 80 की, 100 की, 120 की लिमिट होती है, गाड़ी में 180 तक की लिमिट होती है। क्या आप उस फुल स्पीड पर कभी गाड़ी चलाते हैं? क्या कोई स्कूटर 120 की स्पीड से चलाते हैं? कोई गाड़ी 180 की स्पीड से चलाते हैं? कोई, भले उसमें कैपेसिटी है 180 तक चलने की, लेकिन 180 में चलाते हैं हम? कभी कभी नहीं चलाते। 70, 80, 100, ज्यादा से ज्यादा 120 तक कार ले जाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं ले जाते। हर एक चीज जो बनाई हुई है उसकी फुल स्पीड से नहीं चलाई जाती है। किडनी भी बनाई है प्रकृति ने, तो हम उससे फुल स्पीड तो क्या ओवरवर्क कराते हैं किडनी से, और किडनियां खराब हो जाती है। इसलिए पानी भी जब प्यास लगे तो ही पीने का, मैं पानी पीने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कब पीना है, प्यास लगे तो पीने का। मैंने अभी तक आज के दिन में पानी की बूंद भी नहीं पी है, और ऐसे बहुत दिनों तक मैं पानी नहीं पीता हूं, बहुत दिनों तक सारे दिन पानी नहीं पीता हूं। मैं क्या पीता हूं वो आगे बताऊंगा, लेकिन पानी जरूरत है तो ही पीने का, जरूरत नहीं है तो पीने की जरूरत नहीं है। खाना जरूरत है तो खाओ, भूख लगे तो खाना, नहीं भूख लगे तो नहीं खाना। अच्छा, कितना खाना वो भी बता दिया, भूख लगे इतना खाना, प्यास लगे उतना पीने का। तीसरा है क्या खाएं और क्या पिए, बहुत सिंपल बात है। आप पूछेंगे ये भी कोई बात है, क्या खाएं क्या पिए, बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शरीर जो प्रकृति ने बनाया है तो इसको चलाने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था किया है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो प्रकृति ने इसको चलाने के लिए जो चीजें बनाई हैं उसको एज इट इज खाने का, जो प्रकृति ने बनाया है उसको एज इट इज खाने का। क्या बनाया है प्रकृति ने, फल फूल सब्जियां अनाज आदि आदि जो बनाया है उसको एज इट इज खाने का। अगर हमने उसको प्रोसेस किया तो जितना जितना हम प्रोसेस करेंगे उतना उतना उसमें टॉक्सिन आता जाएगा। जितना जितना प्रोसेस करेंगे टॉक्सिन आता जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, गन्ना, सुगर केन जिसको कहते हैं, गन्ना आप सब जानते होंगे, गन्ना देखा होगा आपने, वो गन्ना प्रकृति ने बनाया है, अमृत है। प्रकृति ने जो भी बनाया अमृत है खाने के लिए, शाकाहारी मनुष्यों के लिए जो भी बनाया है प्रकृति ने वो अमृत है। अगर हम एक महीने तक केवल गन्ने को चूसते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते, न पानी पीते न अनाज खाते, कुछ भी नहीं खाते, केवल गन्ने को चूसते हैं एक महीने तक, तब भी हम स्वस्थ रहेंगे क्योंकि वो प्रकृति का बनाया हुआ अमृत है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, सभ्य हैं, हम क्यों ऐसे गन्ना चूसे? तो हमने क्या किया, उसका रस बनाने के लिए मशीन बना ली, मशीन बना ली और गन्ने का रस करना शुरू कर लिया, रस निकालना शुरू कर लिया और हम रस पीने लग गए। चलो भाई ठीक है, फिर कहा कि हम तो मनुष्य और भी सभ्य हैं, हम तो अभी चांद तक चले गए हैं, इतने सभ्य हो गए हम, अभी गन्ने का रस ही पिएंगे क्या, और वो भी ऐसे सादा रस? तो हमने क्या किया, उसमें मसाला डालना शुरू कर दिया, बर्फ डाला, नींबू डाला, नमक डाला, ये डाला वो डाला, डाल के उसको टेस्टी बनाया। टेस्टी है ना, हम सभ्य मनुष्य हैं, टेस्टी चाहिए हमको। तो धीरे धीरे उसका अमृत्व कम होता गया और टॉक्सिन आना शुरू हो गया। मैं देखो अब टॉक्सिन कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। फिर हमने कहा हम तो चांद तक गए हुए हैं तो हम केवल जूस ही क्यों पिए? तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है हम आपके लिए गुड़ बना देते हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म किया और हमारे लिए गुड़ बना दिया। हम खुश हो गए, हाँ गुड़ बन गया अभी। लेकिन प्रकृति की बनाई हुई किसी भी चीज को जो अमृत है उसको अगर अग्नि पर रखते हैं, अग्नि पर रखते ही उस अमृत का अ निकल जाता है और वो क्या बन जाती है, मृत बन जाती है। उसमें 60-70% उसका जो अमृत है वो खत्म हो जाता है, टॉक्सिन आ जाता है उसमें। जैसे माताएं हैं, माताएं जो हैं वो ककड़ी की सब्जी बनाती है, एक तरफ ककड़ी रखो और एक तरफ ककड़ी की सब्जी रखो, क्या पहले खराब होगा, क्या खराब होगा पहले? सब्जी खराब हो जाएगी, सब्जी 5 घंटे में खराब हो जाएगी और ककड़ी 5 दिन तक भी खराब नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस ककड़ी में अमृतत्व तत्व है और वो सब्जी बनी वो अग्नि पर चढ़ी, उसका अमृतत्व खत्म हो गया, वो मृत हो गए, वो 5 घंटे में गंध आने लग जाएगी उसमें। तो इस प्रकार से हमने वो गन्ने के रस को अग्नि पर चढ़ाया, अमृतत्व खत्म कर दिया, गुड़ बनाया। अच्छा हमने कहा हम तो और भी सभ्य मनुष्य हैं, हम ये काला गुड़ क्यों खाएं? क्योंकि जो गुड़ बनता है वो काला बनता है, तो हम काला गुड़ क्यों खाएं? हम तो सफेद चाहिए, हमको तो सफेद चीज पसंद है, सफेद चाहिए। कंपनी ने वालों ने बोला ठीक है, उसमें वॉशिंग पाउडर डाला, ये चूना डाला, उसका मेल निकाल दिया और हमारे लिए सफेद गुड़ बना दिया। हम बहुत खुश हो गए, वाह क्या सफेद गुड़ है, ये हमारे कुछ खाने लायक बना है। लेकिन क्या है, केमिकल, केमिकल खा रहे हम, वो सफेद गुड़ नहीं, केमिकल खा रहे, अमृतत्व खत्म। हमने कहा अरे चांद क्या, अभी तो हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में था मंगल पर बुकिंग चालू हो गई, मंगल पर जाने के लिए, तो हम इतने आगे बढ़ गए, अभी तक गुड़ ही खाएंगे क्या हम, और कुछ चाहिए हमको? तो कंपनी वालों ने बोला ठीक है, उसमें सल्फर डाला, केमिकल डाला और शक्कर बना दी, एकदम व्हाइट दानस। जब मार्केट से वो प्लास्टिक की बैग लेके आते हैं इतने खुश होते हैं कि क्या शक्कर का दाना है, कितना अच्छा बना है। और है क्या, 100% टॉक्सिन, कितना, एक दो भी नहीं, 100% टॉक्सिन, अमृतत्व 1% भी नहीं है उसमें। बचपन से लेके अभी तक जितनी शक्कर खाई है वो सब सड़ रही है अंदर, वो सब सड़ रही है। हाँ प्रकृति ने निकाल दी होगी वो अलग, पर जो नहीं निकली होगी वो अंदर सड़ रही और वो रोग पैदा कर रही। तो इस प्रकार से हम, हमको अमृत खाना है, विष नहीं खाना है, अमृत खाना है। तो क्या क्या खाना है वो मैं आपको लिस्ट सुना देता हूं कि क्या चीज सदा खाने योग्य है, क्या क्या कभी कभी खाने योग्य है और क्या कभी नहीं खाने योग्य है। उसकी लिस्ट बता, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, भले लिखना हो तो लिख दो। ये एक पुस्तक है सदा स्वस्थ जीवन, जो मेरी लिखी हुई है, इसी टॉपिक पर पूरी डिटेल इसमें है, वो ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो सदा खाने योग्य क्या क्या है? सदा खाने योग्य है सभी प्रकार की हरी पत्तियां, सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, खजूर, नारियल, रस, जूस जिसको कहते हैं, वो हरी पत्तियों का, सब्जियों का, फलों का, किसी का भी जूस, नारियल पानी, सादा पानी, प्राकृतिक दूध। आप कहेंगे ये प्राकृतिक दूध क्या होता है? प्राकृतिक दूध माना जिसको नारियल से, तिल से, मूंगफली, सोयाबीन या अंकुरित गेहूं आदि से बनाया हुआ दूध, आदि ये चीजें सदा खाने योग्य हैं। अच्छा, कभी कभी खाने योग्य क्या है, जिसको कभी कभी खा सकते हैं? देखिए, मैं ये चीजें उनके लिए बता रहा हूं जो अपने शरीर को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम गोली लेके चल रहे हैं, हम अच्छा चल रहे हैं, हम जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमको तो चाहिए ही चाहिए स्वाद वाला खाना, वो अपनी मर्जी पर। लेकिन जब आप ये असली चीजें खाने शुरू करेंगे तो उसका स्वाद इतना वंडरफुल है कि आप बात नहीं कर सकते, इतना वंडरफुल स्वाद है उसका। तो आपको कभी कभी खाने के लिए क्या छुट्टी है? पका हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ या उबला हुआ कोई भी खाना वो कभी कभी खा सकते हैं। देसी गुड़ में बनाई हुई मिठाई, देसी गुड़ मतलब वो जो काले रंग वाला गुड़ होता है ना, केमिकल बगैर, उसमें बनाई हुई मिठाइयां कभी कभी खा सकते हैं। सेंधा नमक, जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं जिसको, सेंधा नमक, वो खा सकते हैं कभी कभी। डबल फिल्टर तेल, डबल रिफाइंड तेल नहीं, डबल फिल्टर तेल मार्केट में मिलता है, या तो कच्ची घाणी का अगर तेल मिले तो वो, या डबल फिल्टर तेल, वो कभी कभी खा सकते हैं। दालें या सूखा मेवा, जो भी काजू, बादाम, पिस्ता जो भी है, उसको 12 घंटे भिगोने के बाद, जिनको भी ये जो बीमारी होती है, मसे की बीमारी होती है, अधिकतर ये ड्राई फ्रूट्स के कारण ही होती है, तो अगर ड्राई फ्रूट्स भी खाना है तो 12 घंटा भिगोने के बाद, तो ये कभी कभी खाने योग्य। और कभी नहीं खाने योग्य, जिसको कभी नहीं खाना चाहिए, खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी नहीं खाना चाहिए, उसमें सबसे पहले ये बता दे कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, तो उसके लिए शाकाहार ही जो है खाने योग्य है। तो जो कभी नहीं खाने योग्य है उसमें मांस, मछली, अंडे, तला हुआ कोई भी पदार्थ, शक्कर, फैक्ट्री में बना हुआ नमक, डबल रिफाइंड तेल, मैदे से बनी चीजें, तीखी मिर्च, चाय, कॉफी, जानवरों का दूध एवं दूध से बनी हुई चीजें, कोई भी चीज, जानवरों का दूध, दूध, छाछ, दही, पनीर, मक्खन, घी आदि कुछ भी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, रसायनों से बने हुए जूस जो मार्केट में मिलते हैं ना, डिब्बा पैक जूस, वो भी रसायनों से बने हुए होते हैं, किसी भी प्रकार की दवाइयां, तंबाकू, शराब, ये सब चीजें कभी नहीं खाने योग्य चीजों में आती है। तो ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डिटेल इस पुस्तक में बताया हुआ है, टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट नियम है कि कैसे खाएं। अब आप कहेंगे ये हमको छोटे बच्चे हैं जो आप हमको सिखा रहे हैं कैसे खाएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, चबा चबा कर खाने का और घूंट घूंट करके पानी पीने का। देखिए, प्रकृति बहुत बुद्धिमान है, उसने दांत यहां पे रखे हैं, क्यों? क्योंकि जो भी खाना आप खाएं उसको चबा चबा कर खाएं, चबाने से वो खाना बिल्कुल लुगदी जैसा बन जाएगा बिल्कुल, इसलिए कहते हैं खाने को पीने की तरह खाना है, कि एकदम मुंह में वो पानी जैसा, लुगदी जैसा हो जाए, उसके बाद उसको नीचे उतारने का, कम से कम 32 से 40 बार चबाने के बाद ही एक एक गिट्टी नीचे उतारने की। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं खाओ, लेकिन खाना है तो चबा चबा कर ही खाओ। आपका अगर किसी को होमोग्लोबिन बढ़ाना है, चबा चबा कर खाएंगे, देखना थोड़े दिन में होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। सारे जो लार है वो यहीं से मिक्स होती है खाने में, और आंतों में दांत नहीं होते, दांत यहीं पर रखे हुए हैं, तो यहां जो काम दांतों को करना है वो आंतों से नहीं कराओ आप, नहीं तो वो टॉक्सिन हो जाएगा अंदर जाने के बाद, वो पचेगा नहीं और टॉक्सिन पैदा करेगा। इसलिए चबा चबा कर खाने का, और पानी भी घूंट घूंट करके पीने का, आराम से बैठ के घूंट घूंट करके पानी पीने का, ऐसा नहीं ग्लास लिया और गट गट करके पी लिया, वो सही विधि नहीं है। और आप देखेंगे चबा चबा कर खाएंगे, घूंट घूंट करके पानी पिएंगे, तो बहुत कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। तो ये नियम है। नेक्स्ट है अपने शरीर से कर्म करते रहने का। जो भी घर का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, दुकान का कार्य है, वो अपने इस शरीर के द्वारा कराने का। हम आजकल मशीनों से कराते हैं, कपड़े धोने के लिए मशीन लाके रख दिया है और फिर एक्सरसाइज करेंगे ऐसे ऐसे। अरे भाई कपड़े धोने के लिए आप हाथ से कपड़े धोएंगे तो वो एक्सरसाइज ही हो जाएगी, अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट से कुछ लाना होगा, 5 मिनट पैदल नहीं जाएंगे, वो स्कूटर लेके जाएंगे और फिर सवेरे सवेरे 1 घंटा आधा घंटा चक्कर लगाएंगे कि भाई पैदल कर रहे हैं। अरे जो पैदल चलने से काम करने का, पैदल चलना है वो कर लो, तो अलग से पैदल चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने शरीर से सारा दिन कार्य कराते हैं तो कोई एक्सरसाइज पैदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद नहीं करता हूं इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर हम इस शरीर से पूरा कार्य करते हैं तो, और किसी की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अच्छा लास्ट नियम बट सबसे इंपॉर्टेंट नियम, बीमारी को ठीक करने के लिए आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा महावाक्य है, लंगनम परम औषधम, संस्कृत शब्द है। लंगन, लंगन माने उपवास। कोई भी बीमारी ठीक होगी केवल उपवास से। इसलिए कोई भी बीमारी हो उपवास कीजिए, ठीक हो जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये शास्त्रों का महावाक्य लंगनम परम औषधम। और आपने आपके आसपास भी देखा होगा कि कभी कभी गाय, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, पक्षी कोई भी बीमार होता है तो वो पहला काम क्या करता है, खाना पीना छोड़ देगा। आप उनके सामने दूध भी ले जाके रखेंगे ना तो वो मुंह ऐसा कर देगा, देखेगा भी नहीं उधर। अगर 2 दिन तक बीमारी ठीक नहीं तो 2 दिन तक वो नहीं खाएगा पिएगा कुछ भी और वो ठीक हो जाएगा। यहां अहमदाबाद में 12 साल के एक बच्चे को पेट में दर्द हुआ, माँ बाप डॉक्टर के पास लेके गए, संडे का दिन था, शाम को 5 बजे की बात थी, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी कराइए, तुरंत सोनोग्राफी, क्योंकि बहुत जबरदस्त दर्द था, बच्चा चिल्ला रहा था। तो सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, कहा 6 mm का अपेंडिक्स है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर अपेंडिक्स फट गया तो सारी बॉडी में फैल सकता है, जहर फैल सकता है, बच्चा मर सकता है, पर आज संडे है, मैं पेन किलर गोली दे देता हूं, वो आप बच्चे को दे देना, कल सवेरे ऑपरेशन कर देंगे। वो मार्केट से पेन किलर गोलियां लिया, फिर जब उन्होंने हमारा संपर्क किया कि ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है तो क्या करें, ऑपरेशन करवा ले क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है, तो समझाया उनको कि अगर ऑपरेशन कराना है तो कराइए, 15 दिन या एक डेढ़ मास रेस्ट करना पड़ेगा, 1.5 मास 15 दिन तक दर्द रहेगा, और अगर हम बता रहे हैं वैसे अगर आप करोगे तो 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा बताइए, तो बच्चे को समझाया कि देखो अगर आप अभी से लेकर 24 घंटे तक उपवास करते हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं 24 घंटे तक, तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा, अपेंडिक्स भी ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। बच्चा समझदार था, ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर आते था वो पूरा परिवार, तो समझदार था, तो उसने कहा ठीक है, उसने उपवास कर लिया। 24 घंटा पूरा होते होते तो उसका दर्द गायब हो गया। 3रे दिन से वो स्कूल जाना शुरू कर दिया उसने, वो ये 25 नवंबर 2012 की बात है, आज का दिन है, कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, ऑपरेशन नहीं, कहीं उसका अपेंडिक्स नहीं, वो बिल्कुल बच्चा आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, आप ताली बजा सकते हैं इस बात पे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मेरी खुद की माँ का है। मेरा परिवार यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है उदयपुर के पास, वहां रहता है, मेरे माँ बाप वहाँ अकेले रहते हैं, भाई और वो सब अहमदाबाद में रहते हैं। तो शाम को 4 बजे माँ का फोन आया कि 2 दिन से बहुत मस्से से बहुत खून बह रहा है और बहुत दर्द कर रहा है, मसा हो गया है खून वाला बहुत बवासीर, तो हम क्या करें? अभी हम उदयपुर जा रहे हैं और ऑपरेशन करवा रहे हैं, हमारा गांव 30-40 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। बोले उदयपुर जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं। मैंने कहा आपको कहीं नहीं जाना है। बोले क्या करूं फिर? मैंने कहा बस अभी आपको घर में ही रहना है, लेकिन अभी से लेके कल दिन में 12 बजे तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। बोले कुछ हो जाएगा तो? मैंने कहा जो होना था वो पहले से हो गया है, अब तो ठीक ही होगा जो होगा सो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप कोई भी जूस लेना 12 बजे बाद, लेकिन 12 बजे तक आपको पानी भी नहीं पीना है। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैंने उसको 12:30 एक बजे फोन किया, मैंने कहा कैसा है अभी तुझे? तो बोले खून तो 2 घंटे में बंद हो गया था। देखो चमत्कार, 2 घंटे में ही खून बंद हो गया, जो खून बह रहा था वो तो। और अभी दर्द काफी कम हो गया है, और अभी 12:30 बजे मैंने थोड़ा सा जूस पिया है, ऐसा माता जी ने बताया। मैंने कहा ठीक है, अभी सारे दिन में आपको कोई खाना नहीं खाना है, अगर बहुत प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा जूस पी लेना, सब्जियों का या फलों का या नींबू पानी पी लेना, और कुछ नहीं करना है आपको। और कल भी आपको सवेरे उठने के बाद 12 बजे तक पानी नहीं पीना है। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैंने उसको 8:00 बजे फोन किया। उसको क्या था, गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, एसिड बहुत रहता था, सिरदर्द, हमेशा सिरदर्द रहता था, और जो कहते हैं नाभि खिसक जाना, वो सब प्रॉब्लम उसको बहुत होता था। तो दूसरे दिन 8:00 बजे मुझे मैंने फोन किया ना, तो बहुत घबराई हुई, आवाज एकदम ढीली ढीली, रोने जैसी। बोले मेरी तो बहुत हालत खराब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सारी रात मुझे बहुत दस्त लगी, पतली दस्तें सारी रात, कि बहुत पतली दस्तें लगी, कमजोर हो गए, अभी मैं क्या करूं, मेरे को कोई गोली दवाई दे दे। मैंने कहा मैं सारी गोलियां छुड़ाने वाला हूं, गोली दवाई नहीं देता हूं कोई। बोले क्या करूं मैं? मैंने कहा बस 4 घंटे सो जा अभी, और कुछ नहीं करना है, 12 बजे तक सो जा और उठ के फिर कोई जूस पी लेना। और सचमुच मुझे 12 बजे तक बहुत अच्छी नींद आ गई, गहरी नींद आ गई उसको। उसके बाद उसने उठ के थोड़ा जूस पिया, और वो आज का दिन है, उसके वो सारे रोग चले गए, मसा चला गया, न गोली न दवाई न ऑपरेशन न कुछ भी नहीं, ये आज का दिन। ये जो रामचंद्र भाई जो अनुभव सुना के गए थे अभी 1.5 महीने पहले, जब ये मौसम बदला ना, उस समय उनकी आंखों में वो हो गया था, चेप लग गया, जैसे कहते हैं ना आंखें लाल लाल, बिल्कुल इतनी दर्द करे और लाल लाल आंखें हो गई, बहुत जैसे लाल बल्ब चमक रहा हो ऐसी आंखें हो गई। मेरे को बोला भाई जी गोली लूं क्या? इनको आपकी इच्छा, गोली लेना हो तो, नहीं लेना हो तो अपने पास तो वही उपाय है, लंगनम परम औषधम। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा 24 घंटे उपवास ठीक हो जाएगा। और उसने 24 घंटे उपवास किया तो 18-20 घंटे पूरे हुए, तब तक तो आंखें नॉर्मल हो गई, दर्द सब चला गया। ये प्रैक्टिकल। तो जो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बकरी है वो भी बीमार होते ही उपवास कर लेते, तुरंत उपवास चालू कर लेते, ना खाना पीना। अब पता नहीं उन्होंने कौन से कॉलेज में ये लंगनम परम औषधम सीखा है, लेकिन उनको याद रहता है, वो उनको याद है लंगनम परम औषधम, और वो तुरंत उपवास कर लेते। तो इस प्रकार से कोई भी रोग हो, आग अगर उपवास करते हैं तो वो रोग ठीक हो जाएगा। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल है जिनके ये सब ठीक हुआ है। अब कब करें उपवास और कितना करें? हर एक को 24 घंटा उपवास नहीं करना है। ये 24 घंटा उपवास तो जो एकदम इस प्रकार की क्रॉनिक हो जाता है तुरंत, तो वो 24 घंटे के उपवास में ठीक हो जाता है। लेकिन किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है दूसरे ऐसे सब, तो उसमें जो सवेरे प्रकृति का सफाई का जो टाइम है, जब प्रकृति सवेरे सफाई करती है, तो उस सफाई में आप मदद करिए उसको। कैसे मदद करनी है? उपवास के द्वारा मदद करिए। अब आप वो प्रकृति सफाई चालू कर रही है और आप अंदर किसी को भेज रहे हो। अब घर में माताएं हैं, बर्तन साफ कर रही है या कपड़े साफ कर रही है, और कोई मेहमान आया तो क्या करेगी? वो बर्तन साफ साइड में रख के पहले मेहमान को रिसीव करेगी, उनको पानी पिलाएगी, उनकी बात सुनेगी, जब वो जाएगा फिर जाके बर्तन साफ करेगी, फिर बर्तन साफ करने बैठी और फिर कोई मेहमान आ गया, फिर वो छोड़ के फिर उस मेहमान की। ऐसे ही प्रकृति जब इस शरीर में सफाई कर रही होती है सवेरे, और हम एक मेहमान को फिर दूसरे मेहमान को फिर तीसरे मेहमान को भेजते ही रहते, तो वो सफाई करती नहीं, वो सफाई अधूरी रह जाती है, और वो ही अंदर सड़ता है और टॉक्सिन बनता रहता है। तो इस प्रकार से टॉक्सिन बॉडी में बढ़ता रहता है। तो सवेरे उठने के बाद 5-6 घंटा उपवास, और यहां उपवास का मतलब है न कुछ खाना न कुछ पीना, उसको उपवास कहते हैं। प्रायः भक्ति में जो सभी उपवास करते हैं, मैं भी करता था एकादशी का उपवास करता था, लेकिन जब तक 11 चीजें नहीं खाएं तब तक एकादशी पूरी नहीं होती थी, वो उपवास होता था। लेकिन यहां जो मैं उपवास कह रहा हूं, उस उपवास में न खाना न पीना, पानी भी नहीं पीना, वो उपवास की बात है। जो बच्चे हैं बूढ़े हैं उनके लिए 5-6 घंटा नहीं, जितना संभव हो सके उसके लिए, लेकिन जो युवा हैं जो कर सकते हैं, बीमारी को ठीक करना है, उनके लिए 5-6 घंटा उपवास कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। और उसके बाद कभी कभी 10 दिन में 15 दिन में चाहो तो एक फुल डे भी उपवास कर सकते हो। तो पूरा एक चैप्टर है उपवास का जो डिटेल में बताया हुआ है, टाइम होने आया है। तो आपको अभी दिनचर्या कैसे रखनी है भोजन की, अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो दिनचर्या कैसे रखनी है, सुबह उठने के बाद 5-6 घंटा उपवास, उसके बाद कोई भी जूस, अगर हो सके तो हरी पत्तियों का जूस सबसे पहले, अगर हरी पत्तियों का नहीं संभव हो तो सब्जियों का जूस, सब्जियों का नहीं हो तो फलों का जूस, कुछ नहीं हो तो नींबू पानी, कुछ नहीं तो सादा पानी, लेकिन कोई भी लिक्विड जब उपवास तोड़ते हैं तब, क्योंकि भोजन का सिद्धांत है हल्के से भारी भोजन की ओर जाना है। जैसे हम वाहन चलाते हैं तो पहले 10, 20, 30 ऐसे करके स्पीड बढ़ाते हैं ना, ऐसे ये शरीर भी हमारा वाहन है, तो इसको चलाने के लिए भी पहले हल्के से भारी भोजन की ओर, सबसे पहले हल्का उपवास, उसके बाद लाइट लिक्विड कुछ भी, उसके बाद कोई भी सलाद फल आदि कुछ भी, जब भी भूख लगे तब सलाद खाओ, अंकुरित खाओ, जो मैंने बताया वो सब चीजें आप खा सकते हैं आराम से। और उसके बाद रात को शाम के भोजन, जो रात का भोजन है, उसमें अगर आप नहीं रह सकते हैं तो पका हुआ भोजन, वैसे खाने की जरूरत नहीं है लेकिन नहीं रह सकते हैं तो पका हुआ कुछ भी भोजन जो आपकी इच्छा में आवे वो खा लो, लेकिन थोड़ा सलाद खाने के बाद वो पका हुआ भोजन खा लीजिए आप, और विश्राम कीजिए, फिर दूसरे दिन से वही दिनचर्या। आप देखिए किस प्रकार से तुरंत रोग ठीक होने लगेंगे। इसके साथ साथ एक चीज आपको जो और करनी है वो है एनीमा का प्रयोग। क्या हुआ, अभी तक किसी की उम्र 20 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 80 साल है, खाने पीने में बहुत गलतियां की है हमने, शरीर में बहुत टॉक्सिन भरा हुआ है, मेरे शरीर में भी काफी भरा हुआ था, बहुत टॉक्सिन भरा हुआ है, और हमारी मेन रोगों का कारण है बड़ी आंत में जमा हुआ मल, जो बड़ी आंत में जमा रहता है उसको जब तक नहीं निकाला तब तक वो रोग ठीक नहीं होगा। तो उसमें उसको निकालने के लिए एक सहज साधन है, वो है एनीमा। ये एक डिब्बा आता है, प्लास्टिक का डिब्बा जिसको एनीमा पोर्ट बोलते हैं, ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें 1.5 लीटर पानी आता है, इसका प्रयोग करने का। इसमें एक नली होती है जो यहां पर लगाई जाती है छेद में, और ये 4 फीट नली होती है, इसमें पानी भर के बाथरूम में 4 फीट ऊपर लगा देने का, टांग देने का इसको, ये नली, इसमें आगे नल होता है, इसको बंद कर देने का, पहले पानी भरने से पहले इसको बंद कर देने का। एक और छोटी नली होती है, इसमें नहीं है वो छोटी नली, ये इसके आगे लगा देने का, और फिर धीरे धीरे नल खोलने का, इससे हवा निकल जाएगी, उसके बाद जब पानी आना शुरू हो तो ये छोटी नली हमारे मल द्वार से, जहां से हम लेटरिन जाते हैं उस मल द्वार से 1-2 इंच बड़ी आंत में डाल के ये पूरा नल खोल देने का, इससे इसका पूरा पानी जो है वो बड़ी आंत में चला जाएगा, 1.25 लीटर, 3-4 मिनट में ये पानी बड़ी आंत में चला जाएगा, और फिर ये नली निकाल देने का, फिर 2-3 मिनट बाद वो पानी पूरा निकल जाएगा। तो वो पानी जो निकलेगा उसके साथ साथ बड़ी आंत में जमा हुआ पुराना कचरा भी निकलता जाएगा। तो कोई भी जब ये जीवन पद्धति की शुरुआत करे, भोजन पद्धति की, तो एकाध मास तक सवेरे और शाम ये एनीमा का प्रयोग जरूर करें। ये किसी भी मेडिकल शॉप पे, सर्जिकल शॉप पे मिल जाता है, तो ये लेके इसका प्रयोग जरूर करें। इसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष और सादा पानी जो बाथरूम में आता है वही पानी यूज करने का। तो इसमें इससे जो है पूरा ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी, जो पुराना मल जमा हुआ है कचरा सारा वो सब क्लियर हो जाएगा तो रोग बहुत जल्दी से इसमें ठीक हो जाएगा। तो इसका एक एनिमा का प्रयोग जरूर करें। अब एक जो ध्यान रखने वाली बात है, जिससे घबरा के आप छोड़ देंगे, आप में से बहुत से ये चालू करेंगे लेकिन घबरा के छोड़ देंगे, वो मैं पहले से बता दूं। जैसे ही आप ये प्रयोग चालू करेंगे, आपने इस शरीर को प्रकृति माँ की गोद में रखेंगे, प्रकृति बहुत खुश हो जाएगी और खुश होते ही वो क्या करेगी, शरीर की सफाई करना चालू कर देगी। अब वो सफाई कैसे करेगी, शरीर में से टॉक्सिन निकालेगी। तो टॉक्सिन किस किस प्रकार से निकल सकता है, टॉक्सिन निकालने के समय बुखार, उल्टी, दस्त, पेशाब में पीलापन, गाढ़ापन, दुर्गंध, बॉडी में दर्द, कफ, खांसी, कमजोरी, अधिक या दुर्गंध युक्त पसीना, खून बहना, फोड़े फुंसी, नाक बहना आदि आदि बातें जो है वो होने लगेगी तुरंत। वो किसी भी रूप में प्रकृति जहां से सरल लगेगा वहां से कचरा निकालेगी, लेकिन वो कचरा निकालेगी। जब इस प्रकार की कोई बात होनी शुरू हो, जिसको हीलिंग क्राइसिस कहते हैं, उभाड़, तात्कालिक परिणाम, तो आप घबराना नहीं लेकिन खुश हो जाना कि हाँ, जो हमने तपस्या चालू की है, शरीर को स्वस्थ बनाने की तपस्या चालू की है, वो अभी एकदम ठीक चल रही है, ये सब सफाई चल रही है। इतना कफ निकलेगा कि आपको आश्चर्य होगा, इतना कफ शरीर में आया कहां से। मैंने बताया ना, मेरी मां को सारी रात दस्त लगी, सारी रात कचरा निकल गया पूरा, उल्टियां होगी, बहुत उल्टियां होगी, 10-15 उल्टियां होगी, कोई घबराने की बात नहीं, ये सब सफाई अभियान चल रहा है प्रकृति, ये होगा, मैं पहले से ही बता रहा हूं। खुजली आएगी, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, ये होगा, ये सब चीज होगी, लेकिन इससे घबराना नहीं। ये इस जब ये चालू हो तब और उपवास कर लेने का, ताकि जल्दी सफाई हो जावे, तो और जल्दी सफाई हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। उस समय थोड़ा रेस्ट करना, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करके, जब ऐसा कुछ कार्य चालू हो जावे तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेने का, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप अपनाएंगे तो ये जीवन जो है वो स्वस्थ बन जाएगा। हमारी एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उनको वो घुटनों का प्रॉब्लम था, दोनों घुटने खराब थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी दे दिया था, ऑपरेशन, दोनों घुटनों का ऑपरेशन फिक्स हो गया था। उसके 15-17 दिन पहले मेरे को यहाँ मिली आबू में और कहा मैं चल नहीं सकती हूँ, दोनों हाथ में वो पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ के चलती थी, ऐसी हालत थी उसकी। उम्र 45-50 साल उम्र थी, शरीर का वजन हो गया था 92 किलो, ये सब। तो मैंने कहा बहन जी, अगर ऑपरेशन नहीं कराना हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बोले हाँ भाई साहब, मेरे को बता दो, ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। उनको यही बताया और उन्होंने वहाँ सेंटर पर, गुजरात में रहती हैं, जाते ही चालू किया। चालू करते ही पहले दिन उनको इतनी उल्टियाँ हुई, रात को मुझे फ़ोन किया, ललित भाई ये क्या हो रहा है मेरे को, इतना खट्टा पानी निकल रहा है। मैंने कहा बस एसिड निकल रहा है शरीर में से, अच्छी बात है कि आपको पहले दिन ही शुरू हो गया, नहीं तो किसी किसी को 1 महीने बाद, 15 दिन बाद होता है, 2-5 दिन बाद होता है, आपको तो पहले ही दिन शुरू हो गया। 3 दिन बाद उसका फोन आया, ललित भाई चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोले मेरे पैर में नसें फूली हुई थी, वेरिकोज वेन था, सारी गायब हो गई, सारी गांठें चली गई, इतने दर्द होती थी वो सब चला गया। कहा अच्छी बात है। 8 दिन बाद उसने डॉक्टर को फोन किया, जहां ऑपरेशन फिक्स हुआ था, उनको फोन करके बताया, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दीजिए, मेरे दोनों घुटने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, अभी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। और वो आज का दिन है, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और उनका वजन 24 किलो वजन कम हुआ है। खुद मेरा 89 वजन था, वो 64 तक पहुंचा, 25 किलो वजन मेरा कम हुआ, अभी 67 वजन है मेरा। इस प्रकार से हर रोग में, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अनेकों की गोलियां बंद हो गई, जिन्होंने इसको समझ के फॉलो किया, अनेकों का बंद हो गया। और जब प्रकृति हमको ये सुविधा दे रही है, हीलिंग पावर अंदर है, तो फिर चिंता किस बात की, वो करेगी सब, ये सब हो जाएगा, सहज रीति से हो जाएगा। तो इस बारे में आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं अभी आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी ये बुक है और ऐसी ही एक DVD भी बनी हुई है, जिसमें ये मेरा 2-2.5 घंटे का पूरा लेक्चर और अनेकों के अनुभव हैं, वो भी उसमें है, वो DVD और बुक। जो आप शिविर में जो भी आए हुए हैं, वो आपके जो भी गाइड हैं उनको आप बताएंगे तो वो गाइड आपको जो है वो दे सकेंगे ये बुक। आप अपने गाइड को संपर्क करना, वो आपको दे सकेंगे। लेकिन अभी आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो हम 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इस बारे में। हाँ जी, थोड़ा या तो आगे आके या माइक हो तो या कुछ आगे आके पूछेंगे तो। हाँ भाई साहब पूछ रहे हैं, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ऊपर तो उस पिए नहीं पिए? मैंने आपको बताया वैसे भी नियम है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पर और सिंपल नियम यह कि भूख लगे तो खाने का, प्यास लगे तो पीने का, जब प्यास लगे तो ही पीने का, बाकी जरूरत नहीं है पीने की कोई।
ओम शांति भाई जी। अच्छा भाई जी, मुझे
माइक पास में रखिए।
मुझे दिन भर में 4-5 बार भूख लगता है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है?
भूख लगता है?
हाँ जी, बहुत 4-5 बार लग जाता
है। भूख लगे तब खाने का, बताया ना, भूख लगे तब खाने का।
अच्छा, अगर चाहे
प्यास लगे तब पीने का,
चाहे 5 बार लगे चाहे 6 बार।
आप जब ये शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक लिमिट हो जाएगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा वो उसका।
हाँ जी, नीमा कितनी लगातार कितनी करना है?
एक आध मास तक सवेरे शाम जरूर लेवे।
हाँ जी,
एक मास तक सवेरे शाम,
एक मास में
सुबह और शाम, एक महीने तक ले,
हर रोज, हर
दोनों टाइम। हाँ, रोज
रोज ले। सुबह एक्सरसाइज से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं?
सुबह उठने के बाद 5-6 घंटा उपवास।
थैंक यू।
ये जो आपने बताया जी के कभी दस्त भी लग जाते हैं ज्यादा
जी,
तो उसमें डिहाइड्रेशन जैसे डॉक्टर?
मुझे अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले मुझे कुछ ऐसा कुछ कारण बना था तो पेट में गैस हो गई थी, कुछ ऐसा खा लिया था मैंने आग्रहवश, किसी के आग्रहवश खा लिया, तो रात को 1:30 बजे से सुबह 9 बजे तक में 22 बार दस्त लगी थी, 22 बार। कोई डिहाइड्रेशन नहीं, आराम से मैंने काम किया सारे दिन।
भाई साहब एक या आप बात आपसे पूछना चाहते हैं, जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, अगर वो एकदम उनको खाना छोड़ देंगे तो उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए या दवाई छोड़ देंगे तो उनको एकदम हार्ट अटैक हो सकता है?
हम दवाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जो भी दवाई जिनकी चालू है उनके लिए हम कह रहे हैं कि ये एक बार अगर ये सिस्टम चालू करते हैं तो करने के बाद धीरे धीरे अपना रिपोर्ट देखते जाएं और दवाई कम करते जाएं। रिपोर्ट ठीक आता जाता है, दवाई कम करते जाएं, फिर दवाई बंद हो जाएगी।
तो कम से कम उनको शुरू में अगर आप कह रहे हैं कि वो चालू करेंगे सुबह उठने के बाद 5-6 घंटे उनको उपवास रखना है
जी,
तो बिना पानी के दवाई कैसे खाएंगे?
दवाई 5-6 घंटे बाद खा लेगा,
5-6 घंटे बाद
खा लेगा।
एक ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है, जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनको डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने पेट को ज्यादा देर खाली नहीं रखना, उनकी शुगर डाउन हो सकती है?
नहीं, उनकी शुगर ठीक हो गई ऐसा कहने से और ऐसा करने से शुगर ठीक हो गई?
नहीं, वो दवाई लेते हैं अगर शुगर
ठीक हो गई।
नहीं, वो तो दवाई लेने से नॉर्मल आ जाती है।
अब यहाँ तो हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनकी दवाइयां शुगर की बंद हो गई है, नहीं खाने से।
अच्छा जी,
उपवास रखने से शुगर की दवाइयां बंद हो गई।
राइट।
डॉक्टर साहब देखिए, एक चीज जो है वो आप कोई भी प्रश्न मुझे ये नहीं पूछे कि इस रोग के लिए क्या करें, ये कोई भी नहीं पूछे, क्योंकि सभी रोग के लिए एक ही बात है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने तो जो जीवन पद्धति अपने में अपनाई है, जिनके द्वारा लगभग 15,000-20,000 भाई बहने तो अभी मैं जानता हूं जो ये कर रहे हैं और जिनको रोग ठीक हुए हैं, वो सिंपल ये भोजन पद्धति है और इससे सभी रोगों में यही इफेक्ट होता है। इसलिए अलग अलग रोग के लिए नहीं पूछे कि इसके लिए क्या करें या उसके लिए क्या करें, सबके लिए एक ही उपाय, क्योंकि कारण एक ही है। छोटा बच्चे भी है तो उनको आप एनीमा का प्रयोग कराइए, उपवास जितना संभव है उतना करें।